नमस्कार भारत, तारीख 28 मार्च दिन मंगलवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया फोन, हालिया चुनाव में जीत पर दी बधाई। सुनवाएंगे अमरीका में पाकिस्तान के राजदूत एजाज अहमद चौधरी से खास बातचीत।
हमारा पैगाम यह है कि हम हिंदुस्तान के साथ अमन और सलामती का रिश्ता चाहते हैं, दोस्ताना माहौल चाहते हैं।
ग्रेटर नोएडा में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान नाइजीरिया के 3 नागरिकों पर हमला।
नेवी एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए गैदरिंग में, जिन्होंने 2 नाइजीरियंस को इन्होंने पीट दिया। 5-6 लोग तो अरेस्ट हो चुके और बाकी लोगों को भी अरेस्ट करने का प्रोसेस जारी है।
अवैध बूचड़खानों पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई से बड़ी चमड़ा कारोबारियों की चिंता।
छोटे लोग हैं वो तो इफेक्टिव होंगे ही, जो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। सोमवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर बधाई दी। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद नरेंद्र मोदी से दूसरी बार बात की। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव शॉन स्पाइसर ने संवाददाताओं को बताया कि ट्रंप ने मोदी को विधानसभा चुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी। हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा तथा मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने परमाणु हथियारों के वैश्विक प्रतिबंध की संधि पर होने वाली बातचीत का बहिष्कार किया है। उनका तर्क है कि ये यथार्थवादी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हैली ने कहा कि उन्हें संदेह है कि उत्तर कोरिया जैसे देश इस संधि का सम्मान करेंगे। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी परमाणु प्रतिबंध की संधि का विरोध किया। 120 से ज्यादा देशों ने आम सभा में परमाणु हथियारों के प्रतिबंध पर कानूनी रोक लगाने की योजना का समर्थन किया। अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान ट्रंप टीम और रूस के कथित रिश्तों की जांच करने वाली अमरीकी समिति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर से पूछताछ करेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक कुशनर सीनेट इंटेलिजेंस समिति के सामने बयान देने के लिए राजी हो गए हैं। कुशनर ट्रंप प्रशासन के 4th सहयोगी हैं जिन्हें रूस के साथ रिश्तों पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिसंबर में कुशनर ने रूसी राजदूत सर्गेई किसलेक से मॉस्को से संबंध सुधारने की बात की थी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने कहा,
I think based on the questions that surround this, he volunteered to go in and sit down with them and say, "Hey, I'm glad to talk."
लगातार उठ रहे सवालों को लेकर कुशनर ने जांचकर्ताओं से मिलने की खुद ही पहल की और कहा कि मैं किन-किन लोगों से मिला और मेरी भूमिका क्या थी, ये बताने में मुझे खुशी होगी। लेकिन ये याद रखा जाए कि चुनाव अभियान के दौरान और सत्ता परिवर्तन के दौरान वो अनगिनत लोगों से मिले थे जो कि उनके काम का हिस्सा था, उनकी भूमिका थी और उन्होंने उसे बहुत अच्छे से निभाया जो उन्हें करना चाहिए था। अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि इराकी शहर मूसल में इस महीने शुरुआत में अमरीकी नेतृत्व के कथित हवाई हमले में मारे गए नागरिकों की जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। एक प्रवक्ता के मुताबिक 10 दिन पहले जहां मौतें हुई हैं उस इमारत के आसपास उसी वक्त हवाई हमलों की रिपोर्टें मिली हैं। उन्होंने कहा कि इन दावों की सच्चाई की पड़ताल करने में करीब 3 हफ्तों का समय लगेगा। पेंटागन से अमरीकी रक्षा विदेश मंत्री जिम मैटिस ने पत्रकारों से कहा कि नागरिकों को मरने से बचाना अमरीकी सेना की प्राथमिकता थी। उन्होंने कहा,
There is no military force in the world that has proven more sensitive.
पूरी दुनिया में ऐसा कोई सैन्य बल नहीं है हमारी तरह जो नागरिकों की मौत के मामले में इतना संवेदनशील रहा है। हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर जंग का मैदान जहां दुश्मन महिलाओं और बच्चों की आड़ में छुपता है वो भी एक मानवीय क्षेत्र है और हम बेगुनाह लोगों की मौत या उनको होने वाले नुकसान को कम करने के हर संभव मानवीय प्रयास करते हैं। ये थे जिम मैटिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने एक ऐसा ब्लड टेस्ट खोज लिया है जो टीबी की बीमारी के नतीजे और जल्दी और प्रभावी ढंग से बताएगा। मुख्य शोधकर्ता टोनी हू ने कहा कि नया टेस्ट कुछ घंटों में ही नतीजा दे देगा, साथ ही संक्रमण की गंभीरता को पहले ही माप लेगा। फिलहाल टीबी के टेस्ट के लिए कफ की जांच, ब्लड कल्चर टेस्ट और बायोप्सी के जरिए जाँच की जाती है जिनमें कई दिनों या हफ्तों में नतीजे आते हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कल एक विरोध मार्च के दौरान अफ्रीकी देश नाइजीरिया के 3 नागरिकों पर हमला किया गया। क्या था पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर किस राज्य में जीत हासिल करने पर है, इसे लेकर भी एक खास रिपोर्ट सुनाएंगे। लेकिन खबरों की शुरुआत उस फोन कॉल से जो कल अमरीका की राजधानी वॉशिंगटन से किया गया और उसके तार दिल्ली में जुड़े। फोन किया था अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी बात हुई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस फोन कॉल को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए वॉशिंगटन से सीधे जुड़ चुके हैं बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। स्वागत है ब्रजेश जी आपका। खबर है कि ट्रंप ने मोदी को हालिया विधानसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी है, क्या फोन कॉल का मकसद बस इतना ही था?
देखिए वात्सल्य, अभी तक की जानकारी तो यही लग रही है कि ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल को प्रांतीय चुनाव में जीत की बधाई देने के लिए फोन किया था। जर्मनी में भी इस तरह के चुनाव हुए थे जहां एंगेला मर्केल की पार्टी को जीत मिली है। साथ ही व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने यह भी कहा था कि इसकी थोड़ी विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी, लेकिन तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं और कुछ और नहीं आया है नया हमारे पास अभी तक व्हाइट हाउस से। मैंने भारतीय दूतावास में बात की, उनका भी कहना था कि व्हाइट हाउस के बयान के बाद ही वो कुछ कह सकते हैं, जो कि आमतौर पर प्रोटोकॉल के तहत यही किया होता भी है। लेकिन जाहिर है कि कुछ और मुद्दों पर भी बात हुई होगी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ट्रंप के सलाहकारों और कैबिनेट के कुछ वरिष्ठ सदस्यों से 2-3 दिन पहले ही मिलकर गए हैं और पूरी संभावना है कि कुछ और मामलों पर भी बात हुई होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक यही जानकारी मिल पाई है कि केवल वो बधाई देने के लिए फोन किया गया था।
जी ब्रजेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं दोनों नेताओं की 2 बार बातचीत, ये दूसरी बातचीत थी और बधाई उन्होंने दी है, लेकिन लगता है थोड़ी देर हुई है बधाई देने में, यानी मकसद कुछ और भी हो सकता है।
जी देखें बिल्कुल, बल्कि देखा जाए तो नवंबर की जीत के बाद से दोनों नेताओं की ये तीसरी बातचीत है और आपने बिल्कुल सही कहा कि व्हाइट हाउस में प्रवेश के बाद दूसरी बातचीत है। मोदी उन पहले 4-5 देशों के नेताओं में से हैं जिनकी ट्रंप से बातचीत हुई थी। तो जाहिर है ट्रंप का अमेरिका भारत को खासी अहमियत दे रहा है। ट्रंप के जो सबसे करीबी सलाहकार हैं स्टीव बैनन, वो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं, ट्रंप खुद चुनाव अभियान के दौरान और उसके बाद भी मोदी की तारीफ कर चुके हैं। तो एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं आप कि दोनों देशों के बीच में हुई है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं दोनों देशों के बीच में, व्यापार के क्षेत्र में, आप्रवासन और खासतौर पर H-1B वीजा के मामलों में, जिन पर दोनों के जो अपने अपने इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। वहीं रक्षा, कूटनीति और आतंकवाद जैसे मामलों पर खासा आपसी सहयोग भी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब इन सब मामलों पर बातचीत होने लगेगी तो हवा का रुख क्या रहता है। और यही जो इन दिनों, जो पिछले 1-2 महीनों के अंदर जो आपसी इंटरेक्शन है वो उस पे वो खासी तेज रही है दोनों देशों के बीच में। तो बस अब आने वाले समय का इंतजार है लोगों को कि किस दिशा में बातचीत जाती है।
जी बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। अमरीकी जमीन से ही पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को बातचीत का पैगाम भेजा है। पठानकोट और उड़ी में हुए हमलों के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बनी हुई है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत एजाज अहमद चौधरी ने बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से खास बातचीत में तमाम मुश्किल सवालों पर सफाई पेश की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
देखिए इसलिए कि हम नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन से कोई भी किसी किस्म के मनफी पैगाम जाएं बाहर, और हमारा पैगाम बहुत वाज़ेह है। हमारा पैगाम यह है कि हम हिंदुस्तान के साथ अमन और सलामती का रिश्ता चाहते हैं, दोस्ताना माहौल चाहते हैं, पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, बाहमी एहतराम की बुनियाद पर एक दूसरे की इज्जत करते हुए, और कोई किसी किस्म की धौंस या हेजमनी ना हो जिस तरह दो मुल्क होते हैं। और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में हमारी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, हमारे वज़ीर आज़म साहब, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इनॉग्रल सेरेमनी भी गए और उसके बाद बड़ी एक अच्छी वो हुई, और बदकिस्मती से उनमें कुछ बिगाड़ आ गया। बिगाड़ इसलिए आया कि कुछ दहशतगर्दी की वाकियात हुए जिसके बाद हिंदुस्तान ने बातचीत का सिलसिला बंद कर दिया। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी यानी आज़ादाना एक सोच है कि ये जो जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान कुछ करना चाहते हैं तो ये दहशतगर्द कोई कार्रवाई करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि सिलसिले रुक जाएं, और जब हिंदुस्तान वो सिलसिले रोक देता है तो वो दरअसल उन कि दहशत गर्दों की हौसला अफजाई हो रही होती है उसमें। तो हमारी तो ये ख्वाहिश होती है कि ये ताल्लुकात जो हैं वो चलते रहे, ये बातचीत का सिलसिला चलते रहे, क्योंकि दहशत गर्दी जो है वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है और उसके खिलाफ मिलकर ही काम करना होगा।
हाफिज सईद हो, जैश मोहम्मद गुट हो, अमरीका उन्हें दहशत गर्द मानता है
जी,
क्या हाफिज सईद को आज पाकिस्तान भी दहशत गर्द मानता है?
देखिए, जो उनका जो ग्रुप है और ये अगर अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में जो जो नाम हैं, हम बाकायदा उनके ऊपर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, आपको पता है कि उस हवाले से जो पाबंदियां नाफिज होनी हैं वो हम नाफिज कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में जब उनकी लिस्टिंग हुई तो उसके मुताबिक हमारे ऊपर जो जो वाजिबात हैं हम वो उनको पूरा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये तो फिर वही मैं कहना चाहूँगा ब्रजेश साहब के बहुत नैरो फोकस के साथ बात देखी जा रहा है पाकिस्तान को। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हमने दहशतगर्दी पे काबू पाया है और जो हालात थे आपके सामने थे कि किस तरीके से 9/11 के बाद और फिर वो बॉम्बिंग के बाद कितने दहशतगर्द हमारे इन पहाड़ों में आ गए, और जब आज उस पूरे खित्ते को हमने पाक किया है तो अभी भी बहुत सारे लोग हमारे शहरों में आए और हम उनके खिलाफ एक्शंस ले रहे हैं। तो ये जो हैं बहुत ही जल्द इंशाल्लाह, बदेर नहीं जल्द, आप ये देखेंगे कि इसके नतायज जो हैं इनका सारे हमारे खित्ते पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा।
आप वाशिंगटन आए और उसके कुछ हफ्तों के अंदर ही कांग्रेस में एक बिल पेश हुआ है कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर डिक्लेयर कर दिया जाए, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए?
देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त रियलिटी है उसका इदराक यहाँ पे शायद अभी नहीं है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की है कोई और कौम ऐसी नहीं कर सकती, और नतीजे सबके सामने हैं। आप ये देखें कि एक ऐसे वक्त में जब पूरा का पूरा खित्ता हमारा तलातुम है में है, पाकिस्तान ना सिर्फ उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीत कर ऊपर आया है बल्कि दुनिया ने देखा, और मैं तो चूंकि वहाँ पे रहता रहा हूँ और आप भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म किया, किस तरीके से ये जो मसाइल हमारे लिए पैदा हुए अफ़गान जिहाद के ज़माने से उसको ख़त्म किया, और आज जो है वो पाकिस्तान जो है उसके नतीजे में, उस पुरअमन माहौल के नतीजे में बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है।
अब मुझे यहाँ पर ये बताएं कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई चाहता है अमेरिका, पाकिस्तान वो करने को तैयार है?
देखिए, हक्कानी नेटवर्क हमारे दोस्त नहीं है, ना हमारी प्रॉक्सी है, और ना ही हम चाहते हैं कि वो किसी किस्म का वायलेंस करें।
इस बात पर फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो है यहाँ की, इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर पा रही? 300 मिलियन का जो एक कंडीशन लगा था कि ये कंडीशन आप अगर नहीं पूरा करते हैं तो वो हम नहीं रिलीज़ करेंगे, उसको आगे और बढ़ाने की बात हो रही है, क्यों यकीन नहीं कर पा रहे हैं वो?
यकीन करेंगे, क्योंकि हकीकत यही है।
तो एक तरफ सवाल है, दूसरी तरफ सफाई है। ये थे अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत एजाज अहमद चौधरी, और उनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
राजधानी दिल्ली की सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है ग्रेटर नोएडा। यहाँ एक युवक की रहस्यमय मौत के विरोध में कल शाम कुछ लोग मार्च निकाल रहे थे। मार्च में शामिल कुछ लोगों ने इसी दौरान नाइजीरिया के 3 लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। पूरे मामले पर अपडेट के लिए मैंने कल देर रात ग्रेटर नोएडा पुलिस के क्षेत्राधिकारी अभिनंदन से बात की।
24 तारीख की शाम में मनीष खारी नाम के 12th क्लास के स्टूडेंट अचानक से गायब हो गए अपने घर के सामने से। ये एनएसजी सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा में। सोसाइटी वालों का और परिवार वालों का शक हुआ कि उनकी ही सोसाइटी में अफ्रीकन लोग रहते हैं वहाँ पर, वो मूलतः नाइजीरिया के स्टूडेंट थे वो। तो हम लोगों ने उनसे भी पूछताछ की, पूछताछ में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिसकी वजह से हम उन्हें मतलब अरेस्ट करें। अगले दिन सुबह में मनीष खारी जी थे वो खुद ही वापस आ गए घर पे, लेकिन वो वापस जब आए तो बेहोशी टाइप की हालत थी। तो उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद वो जो नाइजीरियन स्टूडेंट जिनके ऊपर इन्होंने पहले आरोप लगाया था, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि शायद इन्होंने ही इसे कुछ ड्रग्स या इस तरह की कोई टॉक्सिक सब्सटेंस दिया जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम लोग नेम्ड FIR करेंगे 5 लोगों के खिलाफ जो सोसाइटी में उनके बगल में रहते थे, उनके खिलाफ हम लोगों ने FIR की। वो
पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया, तो उसके बाद हम लोगों ने विसरा भी इनका प्रिजर्व किया और विसरा प्रिजर्व करके हम लोगों ने लेबोरेटरी के लिए भेज भी दिया। उसके बाद फिर उन्होंने आज SSP ऑफिस आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग एक पीसफुल कैंडल मार्च करेंगे उसके परी चौक पर। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है, आप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिक्योरिटी के सारे प्रिकॉशंस भी ले रखे थे वहां पर। उसमें ही कुछ मे बी एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए थे उस गैदरिंग में, जिन्होंने इस चीज को एक अलग ही टर्न देने की कोशिश की। वहां से दौड़ के थोड़ी दूरी पर वहां से अंसल प्लाजा मॉल है, वहां पे दो नाइजीरियंस को इन्होंने पीट दिया।
ये जानकारी में भी आया कि जो नाइजीरियंस हैं उनकी गाड़ियों को जलाने की कोशिश भी की गई।
इन्होंने राइटिंग की पूरी कोशिश की, जलाने की पूरी कोशिश की, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन वहां तुरंत पुलिस पहुंच गई तो ये ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन उन्हें हल्की फिजिकल चोट तो इन्होंने बॉडीली इंजरी पहुंचाई उनको, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बाकायदा सबको आइडेंटिफाई किया, वीडियोग्राफी की है, सबके नाम इन लिस्ट किए और सब पे हम लोग लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं।
तो ये जो नाइजीरियन घायल हुए हैं ये दो लोग हैं?
तीन लोग हैं, सबसिक्वेंटली भी एक लोगों को उन्होंने घायल कर दिया था, अभी FIR दर्ज होगी।
कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है ये मारपीट के मामले में?
ये संख्या लगभग हमको लगता है 25-30 के बीच में होगी।
तो उस कैंडल मार्च में काफी लोग थे?
मार्च में काफी लोग थे, मोर देन 200-250 प्लस लोग थे।
अभी किसी को अरेस्ट किया है आपने?
बिल्कुल, अरेस्टिंग हुई है, 5-6 लोग तो अरेस्ट हो चुके और बाकी लोगों को भी अरेस्ट करने का प्रोसेस जारी है।
जो नाइजीरिया के लोग घायल हुए हैं उनकी कंडीशन कैसी है? क्या
नॉर्मल है, और हम लोगों ने उनसे बात भी की वहाँ पे, हम लोगों ने पर्सनली उनका हाल चाल जानने की कोशिश की, तो वो लोग पूरी तरह से ठीक है, नॉर्मल है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरी तरह से गारंटीड है, अभी हॉस्पिटल में ही है।
जो नाइजीरियंस पांच जिनके खिलाफ नेम्ड FIR हुई है,
हाँ,
क्या ये तीन उन्हीं में से थे या ये अलग हैं?
नहीं, ये अलग, नॉर्मल चलने वाले अलग लोग थे जो वहां पे शॉपिंग कर रहे थे या सड़कों पे नॉर्मली चल रहे थे, उनको इन्होंने टारगेट किया है।
इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्री भी गंभीर हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकार के आदेश पर अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई जारी है, इसे लेकर मांस व्यापारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं चमड़ा कारोबारी भी चिंतित हैं। क्या है उनकी चिंता की वजह, सुनिए कानपुर से रोहित घोष की रिपोर्ट।
भारत में चमड़े का काम मुख्यतः चार शहरों में होता है, कानपुर, आगरा, कोलकाता और चेन्नई। सबसे बड़ा केंद्र कानपुर है जहां 400 से ज्यादा टैनरियां हैं। कानपुर की अहमियत के बारे में स्मॉल टैनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हफीजुर रहमान कहते हैं,
वर्ल्ड में कानपुर में आज की पोजीशन में यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो होता है हार्नेस का, VT का काम जो है, जो होता है जो सेडलर ई वगैरह, जो बेल्ट वगैरह ये वो, तो में वो सिर्फ कानपुर में बनता है।
योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने कुछ ही समय हुआ है और उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा बूचड़खाने बंद करवा दिए गए हैं। आज की परिस्थिति में टैनरी मालिक हो या कर्मचारी, सभी सहमे हुए हैं। मौजूदा स्थिति के बारे में हफीजुर रहमान कहते हैं,
फिक्र तो है ही हम लोगों को कि हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा। उसकी वजह यह है, छोटे लोग हैं वो तो इफेक्टिव होंगे ही, जो बड़े बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं उन पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए करोड़ों के हिसाब से लोन लिए हुए हैं। जब पार्टियाँ पेमेंट रोकेंगी और बैंक से लोन लिए हुए हैं तो उनका फ्यूचर तो और डार्क होगा।
टैनरियाँ कच्चे माल के लिए पूरी तरह से बूचड़खानों पर ही निर्भर करती हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 9,500 करोड़ रुपए का चमड़ा और चमड़े का सामान सालाना तैयार होता है। चमड़ा उद्योग से करीब 5.5 लाख लोग जुड़े हैं। चमड़ा व्यवसायियों और टैनरी मालिकों को डर है कि बूचड़खाने अगर यूं ही बंद रहे तो जल्द ही टैनरियों में भी ताले लगने शुरू हो जाएंगे, हफीजुर रहमान कहते हैं।
पहली बात तो ये है, इफेक्ट कम और ज़्यादा तो उस वक्त देखना चाहिए जब चमड़ा मिले। जब चमड़ा ही नहीं मिलेगा, स्लाटर हाउस बंद हो जाएंगे तो प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, असर तो 100% पड़ जाएगा।
एजाज टैनरी के मालिक मोहम्मद एजाज कहते हैं,
90% असर है, सीधा असर, आज ही से असर शुरू है। जो मार्केट में जिनके पास लेदर चमड़ा है वो 25% जो है इसका रेट इंक्रीज कर चुका है। आदमी दबा रहा है, अपना माल दबा रहा है, मार्केट में बहुत बड़ा फर्क है, एक्सपोर्ट पे इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा।
ऐसा नहीं है कि बूचड़खाने और टैनरियों के बंद होने से सिर्फ मुसलमानों को ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि टैनरियों में भारी संख्या में हिंदू भी काम करते हैं, मोहम्मद एजाज कहते हैं।
90% जो है यहाँ पे जो लेबर है या टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, वो सब हिंदू है। अगर गवर्नमेंट तुष्टिकरण करेगी तो वो तो 10% हिंदुओं को भी नहीं देखेगी, 90% लेबर, टेक्नीशियन सब हिंदू है।
रोहित घोष, BBC कानपुर।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। देख लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों में क्या कुछ छपा है। तृप्ति श्रीवास्तव मौजूद है मेरे साथ।
बिल्कुल वासिल, अभी हम बूचड़खाने की जो रिपोर्ट सुन रहे थे तो ऐसा नहीं है कि असर सिर्फ यूपी में हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि यूपी में मांस कारोबारियों की हड़ताल का असर दिल्ली में मीट की कीमतों पर भी पड़ा है, और यूपी से जानवरों की सप्लाई ना होने की वजह से दिल्ली में बीफ 500 रुपये किलो तक मिला है।
जी, एक तरह जिस तरह एक वक्त में प्याज को लेकर जो चिंता का माहौल था, लगता है कि वो माहौल दोबारा एक बीफ को लेकर बन रहा है।
बिल्कुल बीफ को लेकर बना हुआ है। वहीं एक और खबर है जो कि आपको हर अंग्रेजी और हिंदी अखबार में दिखेगी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ कर दिया कि सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए सरकार आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू नहीं कर सकती। इस पर अमर उजाला ने लिखा है कि कोर्ट ने कहा है कि यह सही है कि सरकारी लाभ के लिए आधार कार्ड को जरूरी नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य मामलों में सरकार आधार कार्ड की मांग कर सकती है। जनसत्ता की हम बात करते हैं तो जनसत्ता ने आज अपने पहले पन्ने पर संसद में जो कल हंगामा हुआ था एयर इंडिया कर्मचारी पर हुए मुद्दे को लेकर, तो उसको उन्होंने प्रमुखता दी है और लिखा है कि इसमें शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ के इस हरकत के बाद शिवसेना सांसदों ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा गायकवाड़ को उड़ान भरने पर लगाए प्रतिबंध की कड़ी निंदा की कल संसद में। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर लिखा है कि दिल्ली में दिवाली के बाद होने वाले फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 की मेजबानी अब दिल्ली को नहीं मिल पाएगी क्योंकि वहां दिवाली के बाद हवा प्रदूषित हो जाती है, ऐसे में उन्हें अब खिलाड़ियों की चिंता काफ़ी सताने लगी है। और अखबार ने अधिकारियों के हवाले से ये भी लिखा है कि फाइनल मैच अब दिल्ली की जगह कोलकाता के सॉल्ट लेक मैदान में होगा। वहीं दैनिक भास्कर ने कश्मीर में पैलेट गन और अल्पसंख्यकों पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है कल, उस खबर को पहले पन्ने बहुत प्रमुखता से छापते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के बजाय गंदा बदबूदार पानी, केमिकल युक्त पानी या ऐसा कोई अन्य विकल्प आजमाया जाए जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, और इसके लिए कोर्ट ने 10 अप्रैल तक जवाब भी मांगा है।
और तृप्ति, मैं ये आपको बता दूं कि जर्मनी के एक संग्रहालय से एक सोने का सिक्का चोरी हो गया है जिसकी कीमत करीब 26 करोड़ रुपए है। और क्या है इस सिक्के की खासियत, अगर हमारे श्रोता जानना चाहते हैं तो वो रुख कर सकते हैं bbchindi.com का।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब रुख करते हैं ओडिशा का। ये वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों खास फोकस है। पिछले महीने जिला परिषद चुनावों में मिली कामयाबी के बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतने के मंसूबे बना रही है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी ओडिशा में होनी है। बीजेपी के मिशन ओडिशा पर सुनिए संदीप साहू की ये रिपोर्ट।
अपनी ट्वीट में बीजद सांसद तथागत सतपति ने न केवल ये कहा कि भाजपा उनकी पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रही है, उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भाजपा बीजद का नाम और चुनाव चिन्ह हथियाने के साथ साथ उड़ीसा में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की फिराक में है। बिना नाम लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक सांसद पर इस काम में भाजपा की मदद करने का आरोप भी लगाया। हालांकि बीजद की ओर से इसे सतपति का व्यक्तिगत मत बताया गया है। पार्टी के प्रवक्ता कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र ने BBC से कहा,
सोशल मीडिया में चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, बाकी सारे जितने भी सोशल मीडिया हैं, इसमें अपने व्यक्तिगत आप ओपिनियन वहाँ देते हैं, आपके मन में क्या है वो प्रकट करते हैं आपके लिमिटेड सर्कल ऑफ जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच, इसको इतने ज़्यादा महत्व नहीं देनी चाहिए।
वैसे भाजपा ने भी तथागत के आरोप का खंडन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश पुजारी ने BBC से कहा कि उनकी पार्टी जोड़तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर भाजपा की विचारधारा में विश्वास रखने वाला दूसरी पार्टी का कोई नेता आना चाहे तो पार्टी इसका स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि बीजद वैसे भी टूटने की कगार पर है।
BJD से आके भाजपा में शामिल तो पहले भी हुए हैं, कांग्रेस से आके भी भाजपा में शामिल हुए हैं, तो शामिल होना नहीं होना तो उनका मर्जी। जो भी आने के लिए कोशिश करेगा, भाजपा में शामिल होने के लिए कोशिश करेगा, अगर अच्छा आदमी है, अच्छा नेता है, समाज के प्रति निष्ठा है, तो हम लोग वेलकम करेंगे।
राज्य में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में अपने अच्छे प्रदर्शन के बाद भाजपा शिविर काफी उत्साहित है। उत्तर प्रदेश में भारी जीत के बाद पार्टी के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। पार्टी को अब ये लग रहा है कि सन 2019 में होने वाले चुनाव में वो बीजेपी को मात देकर राज्य में सत्ता में आ सकती है। शायद यही कारण है कि पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक अप्रैल 15 और 16 को भुवनेश्वर में आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के सभी चोटी के नेता हिस्सा लेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार इस बैठक के दौरान पार्टी अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करेगी।
लेकिन बीजेपी को पूरा विश्वास है कि 2014 की तरह इस बार भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा।
एक ही वायदे आज तक उन्होंने संपूर्ण नहीं किए, तो इस देश के जो सामान्य गण साधन जनता है, जनता जान जाएगी कुछ दिनों में कि किस तरह से नारेबाजी करके लोगों को जो है सपने दिखा के, गलत सपने दिखा के आप ज्यादा देर शासन नहीं कर सकते।
2019 के चुनाव में जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि 19 सालों में पहली बार बीजेपी और नवीन पटनायक को कड़ी चुनौती का सामना।
जीत की उम्मीद भारतीय क्रिकेट टीम को भी है, जो धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है। तो क्या है खेल का हाल, जान लेते हैं खेल खबरों में।
स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच चल रहा है धर्मशाला में। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक स्थिति ये है कि भारत के पास सिर्फ 87 रन का लक्ष्य है। भारत के पास 10 विकेट हैं, दो दिन का खेल अभी बाकी है। भारत काफी मजबूत स्थिति में है। इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया भारत के बॉलर्स ने। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन ने लिए 3 विकेट और रविंद्र जडेजा ने लिए 3 विकेट। तीसरे दिन के खेल के बाद मैच के बारे में बात की रविंद्र जडेजा ने।
खेल के भी ऐसा अच्छा लग रहा था कि भाई टेस्ट क्रिकेट का जो चैलेंज होता है, जो लोग बोलते हैं कि ये टफ होता है, तो वो आज रियलाइज हो रहा था। और हमारा अपर एंड ये था कि हम लोग 30 रन आगे थे, 30-32 रन कुछ आगे थे ऑलरेडी।
आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का चौथे दिन का खेल शुरू होगा धर्मशाला में। अब बात बैडमिंटन की। आज से दिल्ली में शुरू होगा इंडियन ओपन वर्ल्ड सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट। शुरुआत में भारत की साइना नेहवाल का मुकाबला होगा चाइनीज तैपेई की चिया सिन ली से। वहीं दूसरी तरफ पीवी सिंधु का मुकाबला होगा सिंगापुर की जियाओयू लियांग से। और जाने से पहले बात टेनिस की। अगले महीने डेविस कप के क्वार्टर फाइनल्स में भाग नहीं लेंगे एंडी मरे। एल्बो इंजरी की वजह से एंडी मरे ने मायामी ओपन और डेविस कप से पुल आउट किया। वहीं दूसरी तरफ मायामी ओपन में ब्रिटेन की जोआना कोंटा ने हराया फ्रांस की पॉलिन परमेंटियर को 6-4, 6-0 से और पहुंच गई हैं चौथे राउंड में। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे कार्जू ने एक बार फिर अपने दिल की बात कही है। उन्होंने बताया है कि एक दौर में वो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता से प्यार करते थे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि जब मैं युवा था तब मेरा दिल जयललिता पर आ गया था, जिनके बारे में मैं सोचता था कि वो बेहद खूबसूरत थी। हालांकि बेशक ये प्रेम एक तरफा था और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में और क्या कुछ लिखा है आप पढ़ सकते हैं bbchindi.com पर। और अब सभा के आखिरी हिस्से में हम आ गए हैं, तो सुन लेते हैं एक बार फिर मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। सोमवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर बधाई दी। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद नरेंद्र मोदी से दूसरी बार बात की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने परमाणु हथियारों के वैश्विक प्रतिबंध की संधि पर होने वाली बातचीत का बहिष्कार किया है। उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ तूफान डेबी ने तबाही मचा दी है और से क्वींसलैंड की तरफ बढ़ रहा है। अमरीकी वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने एक ऐसा ब्लड टेस्ट खोज लिया है जो टीबी की बीमारी के नतीजे जल्दी और प्रभावी ढंग से बताएगा।
नमस्कार भारत में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।